डैनियल की पुस्तक संख्या 166, भविष्यवाणी की गुत्थी सुलझाना, फ्रांसीसी क्रांति, पुतिन का रूस और यूक्रेनी संघर्ष।
जब हम पद 10 के भविष्य सूचक इतिहास के आधार पर 1979 में अंत के समय की प्रतिरूपता पर विचार करना शुरू करते हैं, तो पृथ्वी पशु के दोनों सींगों की तीसरी पीढ़ी के इतिहास में लौटना आवश्यक हो जाता है। 1913 में पृथ्वी पशु के गणतंत्रवाद वाले सींग ने वैश्विकतावादी बैंकिंग प्रणाली के साथ समझौते की अपनी पीढ़ी की शुरुआत की, और 1919 में सच्चे प्रोटेस्टेंटवाद वाला सींग धर्मत्यागी प्रोटेस्टेंटवाद के धर्मशास्त्रियों तथा अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के साथ समझौते की अपनी पीढ़ी में प्रवेश कर गया, जब उसने अपनी शैक्षिक प्रणाली की मान्यता दुनिया को सौंप दी। दोनों सींगों ने दुनिया के साथ एक समझौतापूर्ण संबंध शुरू किया, जिसने उस समय से आगे उनके अपने संदेशों की दिशा बदल दी।
उस इतिहास में उत्तर के राजा और अंतिम दिनों के दक्षिण के राजा के लिए आरंभिक बिंदु भी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। फातिमा का चमत्कार 13 अक्टूबर 1917 को पुर्तगाल के फातिमा में हुआ। ये मरियम के दर्शनों की एक श्रृंखला की पराकाष्ठा थी, जिसके साक्षी तीन युवा चरवाहा बच्चे थे, लुसिया दोस सांतोस और उसके चचेरे भाई फ्रांसिस्को और जसिंता मार्तो। बच्चों द्वारा दिए गए विवरणों के अनुसार, कुमारी मरियम, जिन्हें आवर लेडी ऑफ फातिमा के रूप में पहचाना गया, मई से अक्टूबर 1917 तक हर महीने की 13 तारीख को उन्हें प्रकट हुई।
13 अक्टूबर 1918 के अंतिम दर्शन के दौरान दसियों हजार लोग फातिमा के पास कोवादा एरिया में इकट्ठा हुए, इस आशा में कि वे एक चमत्कार देखेंगे, जैसा कि बच्चों ने भविष्यवाणी की थी। साक्षियों के अनुसार सूर्य ने रंग बदलते, घूमते और आकाश में नाचते हुए दिखाई दिया। ये घटना सूर्य का चमत्कार या फातिमा का चमत्कार के नाम से जानी जाने लगी।
फातिमा का चमत्कार कैथोलिक इतिहास और भक्ति में एक महत्वपूर्ण घटना है, और वर्षों से ये व्यापक अध्ययन, बहस और धार्मिक व्याख्या का विषय रहा है। फातिमा की घटनाओं ने लोक भक्ति, माता मरियम के प्रति भक्ति और कैथोलिक चर्च के भीतर अंतकालीन विषयों की व्याख्या पर स्थायी प्रभाव डाला है।
बोल्शेविक क्रांति 7 नवंबर 1917 को रूस में तब हुई जब व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में बोल्शेविक बलों ने पेत्रोग्राद, अब सेंट पीटर्सबर्ग में महत्वपूर्ण सरकारी भवनों और बुनियादी ढांचे पर कब्जा कर लिया। ये घटना 917 की रूसी क्रांति की परिणति को चिह्नित करती है, जो वर्ष की शुरुआत में हुई फरवरी क्रांति से शुरू हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन त्याग दिया और एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई।
क्रांति के दौरान बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका और रूस पर सोवियत नियंत्रण स्थापित किया। बोल्शेविकों ने एक समाजवादी राज्य की स्थापना की घोषणा की और अपने क्रांतिकारी कार्यक्रम को लागू करना शुरू किया, जिसमें उद्योग का राष्ट्रीयकरण, भूमि का पुनर्वितरण और रूस का प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलना शामिल था। अक्टूबर क्रांति ने अंततः सोवियत संघ के गठन का मार्ग प्रशस्त किया और रूस तथा विश्व पर गहरे और दूरगामी प्रभाव डाले और 20वीं सदी के इतिहास की दिशा को आकार दिया।
यीशु अंत को शुरुआत से दिखाते हैं और अंतिम दिनों के उत्तर के राजा और दक्षिण के राजा को पूरी तरह समझने के लिए उनके आरंभ को समझना आवश्यक है। दानियल के 11वें अध्याय में पहचाने गए दक्षिण और उत्तर के शाब्दिक राजा इस प्रकार परिभाषित है। दक्षिण का राजा वो शक्ति है जो मिस्र के वास्तविक भूभाग पर शासन करती है, और उत्तर का राजा वो शक्ति है जो बाबुल से संबंधित वास्तविक भौगोलिक क्षेत्र पर शासन करती है।
क्रूस के समय में शाब्दिक भविष्यवाणी आत्मिक भविष्यवाणी में रूपांतरित हो गई, जब प्राचीन शाब्दिक इसराइल आधुनिक आत्मिक इसराइल में रूपांतरित हो रहा था। शाब्दिक मूर्ति पूजक रोम ने 70 से 70 ईस्वी के तक 3.5 शाब्दिक वर्षों के लिए शाब्दिक यरूशलेम को रौंद डाला, और आत्मिक पोपीय रोम ने 3.5 आत्मिक वर्षों तक आत्मिक यरूशलेम को रौंद डाला।
आध्यात्मिक बाबुल की पहचान प्रकाशित वाक्य के अध्याय 17वें अध्याय में उस वेश्या के रूप में की गई है जो पृथ्वी के राजाओं के साथ व्यभिचार करती है। आध्यात्मिक मिस्र की पहचान प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय में नास्तिक फ्रांस के रूप में की गई है। आध्यात्मिक उत्तर के राजा का आधुनिक रूप, जिसे 1798 में अंत के समय में घातक घाव लगा और जिसने नियुति 89 में अंत के समय में आध्यात्मिक दक्षिण के राजा के आधुनिक रूप के विरुद्ध प्रतिघात किया, और आध्यात्मिक दक्षिण के राजा का आधुनिक रूप, दोनों का प्रतिनिधित्व दानियेल 11 के 40वें पद में किया गया है। दोनों शक्तियों की अंतिम दिनों की अभिव्यक्तियों की उत्पत्ति नमिस 17 से 90 AC की समय सीमा में है, जो पृथ्वी के पशु के दोनों सींगों के लिए समझौता करने वाली पीढ़ी के समान ही समय सीमा है। अंतों को ठीक से लागू करने के लिए उन प्रारंभों को पहचानना आवश्यक है। अंतिम दिनों के उत्तर और दक्षिण के राजाओं की शुरुआत दोनों फ्रांसीसी क्रांति से होती है।
16वीं शताब्दी में धार्मिक सुधार आंदोलन ने लोगों के सामने बाइबल को खोलकर यूरोप के सभी देशों में प्रवेश पाने का प्रयास किया। कुछ राष्ट्रों ने उसे स्वर्ग के दूत के समान आनंद के साथ स्वागत किया, अन्य देशों में पापाशाही उसके प्रवेश को रोकने में बड़े पैमाने पर सफल रही, और बाइबल ज्ञान का प्रकाश उसके उन्नतिदायक प्रभावों सहित लगभग पूरी तरह बाहर कर दिया गया। एक देश में यद्यपि प्रकाश को प्रवेश मिला, पर अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सदियों तक सत्य और असत्य प्रभुत्व के लिए संघर्ष करते रहे, अंततः बुराई विजयी हुई और स्वर्ग का सत्य बाहर धकेल दिया गया। ये दंड का कारण है कि प्रकाश संसार में आया और मनुष्यों ने प्रकाश से बढ़कर अंधकार को प्रेम किया, यूहन्ना 3:19। राष्ट्र को उस मार्ग के परिणाम काटने के लिए छोड़ दिया गया जिसे उसने चुना था। जिस प्रजा ने उसके अनुग्रह के वरदान का तिरस्कार किया था, उससे परमेश्वर के आत्मा का अंकुश हटा लिया गया, बुराई को परवान चढ़ने दिया गया और सारे संसार ने प्रकाश के जानबूझकर अस्वीकार का फल देखा। बाइबल के विरुद्ध युद्ध, जो फ्रांस में अनेक सदियों तक चलाया गया, अंततः क्रांति के दृश्यों में परिणत हुआ। वो भयानक उद्रेक नो केवल पवित्र शास्त्रों के प्रति रोम द्वारा किए गए दमन का स्वाभाविक परिणाम था। इसने पोप नीति के क्रियान्वयन का वो सबसे प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे विश्व ने कभी देखा है, उन परिणामों का एक उदाहरण जिनकी ओर रोमन कलीसिया की शिक्षा 1000 से भी अधिक वर्षों से उन्मुख रही थी। पापसी की सर्वोच्चता के काल में पवित्र शास्त्रों के दमन की भविष्यवाणी भविष्यद वक्ताओं ने पहले ही कर दी थी, और प्रकाशित वाक्य के दृष्टा पाप का मनुष्य के प्रभुत्व से विशेषकर फ्रांस के लिए होने वाले भयंकर परिणामों की ओर भी संकेत करता है। महान विवाद 325-527।
फ्रांसीसी क्रांति का उद्भव पोपीय प्रभुत्व की अवधि के दौरान पवित्र शास्त्रों के दमन से हुआ। नास्तिकता का जन्म, जो पोप सत्ता का परम शत्रु बनने वाला था, स्वयं पोप सत्ता के द्वारा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 तक हुई, परंतु वो नास्तिक क्रांतिकारी आत्मा, जिसका आरंभ हांस में हुआ था, समस्त यूरोप में और उससे भी परे फैलती रही। फ्रांस में क्रांति की समाप्ति के 118 वर्ष बाद रूस में रूसी क्रांति आरंभ हुई। नास्तिकता की वो क्रांति जिसका आरंभ फ्रांस में हुआ था, रूस में समाप्त हुई, और नियन 17 में रूस उस राष्ट्र का भविष्यवाणीगत प्रतिनिधि बन गया जिसे मिस्र की नास्तिकता द्वारा प्रतीकित किया गया है। दक्षिण के राजा के रूप में निरूपित अजगर की शक्ति फ्रांस से रूस में स्थानांतरित हो गई थी। फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक और भविष्य सूचक रूप से प्रतिनिधित्व नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, और उस अर्थ में नेपोलियन ऐसे राष्ट्र के प्रथम नेता का प्रतिनिधित्व करता है जो मिस्र के नास्तिकवाद से उत्पन्न क्रांति द्वारा स्थापित हुआ था। नेपोलियन का आत्ममोह पुतिन के आत्ममोह में उचित रूप से परिलक्षित होता है। नेपोलियन छवियों और प्रचार की शक्ति से भलीभांति परिचित थे। पुतिन भी है, जो पूर्व KGB अधिकारी थे। KGB प्रचार में विशेषज्ञता रखती है। नेपोलियन ने अपनी सत्ता, शक्ति और नेतृत्व की छवि जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिचित्रण का उपयोग किया। उन्होंने अपने समय के कुछ सबसे ख्याति प्राप्त कलाकारों से प्रतिचित्र बनवाए, जिनमें जाक लुइस डेविड, आंटोन जान ग्रोस और जान ऑगस्ट डामिट इंग्रे आदि शामिल थे। इन व्यक्तिचित्रों में नेतृत्व विविध मुद्राओं और परिवेशों में दर्शाया गया था, जो आधिकारिक राजकीय व्यक्तिचित्रों से लेकर अधिक अनौपचारिक दृश्यों तक फैले हुए थे। वे नेपोलियन के लिए केवल व्यक्तिगत स्मृति चिन्ह ही नहीं थे, बल्कि देश और विदेश दोनों में उनकी छवि और प्रभाव फैलाने के साधन भी थे। पुतिन परपियाठान ने अपने लिए भी यही काम कर दिखाया है, अपनी अनोख तस्वीरों के माध्यम से ऐसे परिवेशों में जो इंटरनेट पर किसी भी आधुनिक इन्फ्लुएंसर की बराबरी करते हों। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में राजा उसके परिवार और दरबार के अधिकारियों को अपदस्थ कर मृत्युदंड दिया गया। रूसी क्रांति की शुरुआत में जार उसके परिवार और दरबार के अधिकारियों को अपदस्थ कर मृत्युदंड दिया गया। जो क्रांति फ्रांस में शुरू हुई वो रूस में परिणति को पहुंची। प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय की भविष्यवाणी का विषय फ्रांसीसी क्रांति है, और इसलिए फ्रांसीसी क्रांति भविष्यवाणी की व्याख्या के नियमों के अधीन है। यीशु किसी बात के अंत को हमेशा उसकी शुरुआत से दर्शाते हैं, इसलिए रूसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति का अंत है। व्लादिमीर पुतिन उस राष्ट्र के अंतिम नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मिस्र की नास्तिकता द्वारा लाई गई एक क्रांति में स्थापित हुआ था। रूस के पहले नेता व्लादिमीर लेनिन थे। व्लादिमीर नाम स्लाविक मूल का है और दो तत्वों से मिलकर बना है, व्लैड और मीर। व्लैड स्लाविक मूल व्लादिति से निकला है, जिसका अर्थ शासन करना या शक्ति का प्रयोग करना होता है। मीर का अर्थ विश्व है। पहले व्लादिमीर लेनिन अंतिम व्लादिमीर पुतिन का प्रतिरूप है, जिनका प्रतिरूप नास्तिकता की क्रांति के पहले नेता नेपोलियन भी है। अप्रैल 1814 में छठे गठबंधन के युद्ध में नेपोलियन की हार और फॉन्टेनब्लो की संधि के बाद उसने फ्रांस के सिंहासन का परित्याग कर दिया और उसे भूमध्य सागर के एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। उसे द्वीप पर संप्रभु अधिकार प्रदान किए गए और सम्राट की उपाधि बनाए रखने की अनुमति दी गई, हालांकि अत्यंत सीमित रूप में। नेपोलियन ने एल्बा पर लगभग 10 महीने बिताए। इस दौरान उसने फ्रांस में सत्ता में लौटने की योजनाएं बनाई। एल्बा से उसके भाग निकलने और 100 दिनों के दौरान फ्रांस में उसके संक्षिप्त सत्ता प्राप्ति के बाद जून 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया गया। इस हार के बाद मित्र राष्ट्र, विशेषकर ग्रेट ब्रिटेन, इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित थे कि नेपोलियन आगे कोई और परेशानी न खड़ी कर सके। परिणाम स्वरूप उसे फिर से निर्वासित किया गया, इस बार दक्षिण अटलांटिक में स्थित सुदूर सेंट हेलेना द्वीप पर। 1821 में अपनी मृत्यु तक नेपोलियन ने सेंट हेलेना में निर्वासन में ही अपने जीवन का शेष समय बिताया। पुतिन केजीबी की पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि है। केजीबी 1954 से लेकर 1951 में सोवियत संघ के विघटन तक सोवियत संघ की मुख्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसी थी। ये आंतरिक सुरक्षा, प्रति जासूसी और देश के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थी। केजीबी अपने व्यापक जासूस नेटवर्क, निगरानी अभियानों और जनसंख्या पर साम्यवादी शासन का नियंत्रण बनाए रखने में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती थी। व्लादिमीर पुतिन केजीबी राज्य सुरक्षा समिति के सदस्य थे, जो सोवियत संघ की मुख्य सुरक्षा और खुफिया एजेंसी थी। लेनिनग्राद राज्य विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद पुतिन इन 1975 में केजीबी में शामिल हुए। इन 1981 में सोवियत संघ के विघटन तक पुतिन केजीबी के लिए काम करते रहे। उसके बाद वे राजनीति में आए और अंततः 2000 में रूस के राष्ट्रपति बने। केजीबी में उनकी पृष्ठभूमि ने उनके शासन और विदेश नीति के दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। एल्बा द्वीप पर नेपोलियन का पहला निर्वासन 1991 से 2000 तक के इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, जब केजीबी की विचारधारा वापस लौटी। जब अंततः पुतिन पराजित होंगे, जैसा कि 13वें से 15वें श्लोकों में दर्शाया गया है, तो वो दूसरी पराजय, पहली इन 1989 से, का प्रतीक वाटरलू और नेपोलियन का दूसरा निर्वासन होगा, जहां उसकी मृत्यु हुई थी। 1796 और 1799 में नए नेपोलियन ने पापसी को घातक चोट पहुंचाई। 1799 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो गई, लेकिन 1917 तक क्रांति रूस में बोल्शेविक क्रांति के रूप में पहुंच चुकी थी। 1917 में पुर्तगाल में फातिमा का चमत्कार हुआ और उन 3 बच्चों को, जिन्होंने कथित रूप से मरियम और यूसुफ से संवाद किया था, 3 गुप्त संदेश दिए गए। ये 3ों संदेश इस अर्थ में गुप्त थे कि उन्हें केवल पोप अर्थात उत्तर का राजा द्वारा ही पढ़ा जाना था। इन संदेशों ने पोप को निर्देश दिया कि वे कैथोलिक चर्च के नेताओं के साथ एक विशेष बैठक बुलाए और एक विशेष समारोह आयोजित करें, ताकि रूस, जो इससे एक वर्ष पहले ही साम्यवादी रूस बन गया था, को कुवारी मरियम को समर्पित किया जा सके।
संदेशों में ये चेतावनी थी कि यदि पोप रूस को मरियम को समर्पित करने के आदेश को पूरा करने से इनकार करते, तो दुनिया को एक और विश्व युद्ध झेलना पड़ेगा। चमत्कार के अगले महीने प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना था। फातिमा के संदेश रूढ़िवादी कैथोलिक भविष्य सूचक व्याख्या के लिए एक ढांचा बन गए। फातिमा के संदेशों ने कैथोलिक चर्च के भीतर रूढ़िवादी कैथोलिकवाद, जिसका प्रतिनिधित्व पोप जॉन पॉल द्वितीय और प्रथम वेटिकन परिषद द्वारा किया गया, और उदारवादी कैथोलिकवाद, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान वॉक पोप और द्वितीय वेटिकन परिषद द्वारा किया गया, के बीच एक संघर्ष की पहचान की।
फातिमा के संदेशों में अच्छा पोप सफेद पोप था और बुरा पोप काला पोप था। अच्छा पोप, पोप जॉन पॉल द्वितीय, एक रूढ़िवादी पोप थे, जिन्होंने फातिमा की कुआरी मरियम को अपना मार्गदर्शक आदर्श माना, और बुरा पोप वोक पोप है, जो कथित कुआरी मरियम के किसी भी संदेश को भी अस्वीकार करता है। जब आप पुर्तगाल के फातिमा में स्थित तीर्थ स्थल पर जाते हैं, तो जैसे ही आप परिसर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार एक ओर काले पोप और दूसरी ओर सफेद पोप की दो विशाल प्रतिमाओं के बीच स्थित है, जो फातिमा की भविष्यवाणियों में पहचाने गए आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है।
फातिमा की तीन गुप्त संदेशों का दूसरा तत्व कैथोलिक धर्म, उत्तर का राजा और नास्तिकता, दक्षिण का राजा के बीच होने वाले संघर्ष पर उसका जोर था। यह स्वीकार किए बिना कि कैथोलिक धर्म और नास्तिक रूस का युद्ध एक शैतानी भविष्यवाणी का विषय है, जो कैथोलिक धर्म के बड़े हिस्से को निर्देशित करती है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैथोलिक चर्च ने नाजी जर्मनी को जो समर्थन प्रदान किया था, उसे समझना कठिन है, यदि असंभव नहीं।
लेनिनग्राद की लड़ाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 8 सितंबर 1981 से 27 जनवरी 1984 तक चली, इतिहास की सबसे लंबी और सबसे क्रूर घेराबंदियों में से एक थी। स्टालिनग्राद की लड़ाई, जो 23 अगस्त 1942 से 2 फरवरी 1943 तक हुई, को अक्सर द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे रक्तरंजित और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई माना जाता है। इसमें दोनों पक्षों को भारी जनहानि हुई। अनुमान है कि कुल हताहतों की संख्या 20 लाख से अधिक थी, जिसमें मृतक, घायल और बंदी बनाए गए सैनिक शामिल थे। स्टालिनग्राद की लड़ाई ने युद्ध में एक निर्णायक मोड़ भी चिह्नित किया, क्योंकि इसमें सोवियत सेना को जर्मन सेना पर निर्णायक विजय मिली और अंततः नाजी जर्मनी की पराजय की राह प्रशस्त हुई।
रूस के खिलाफ नाजी जर्मनी के युद्ध को, विशेषकर अभी अभी उद्धृत की गई दो लड़ाइयों को स्वीकार किए बिना कैथोलिक चर्च के गुप्त सहयोगी के रूप में जर्मनी की भूमिका को समझना कठिन है। कैथोलिकवाद, जो फातिमा की मरियम की शैतानी भविष्यवाणी से प्रेरित था, और रूस के नास्तिकतावाद तथा बाद में साम्यवादी सोवियत संघ के बीच के आध्यात्मिक युद्ध की आधारभूत धारणाओं की समझ के बिना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में नाजी युद्ध अपराधियों को कैथोलिकवाद द्वारा गुप्त रूप से छिपाने और फिर स्थानांतरित करने की तर्कसंगति समझ में नहीं आती। रूस के खिलाफ अपने संघर्ष में नाजी कैथोलिकवाद की प्रतिनिधि सेना थे।
इसी भविष्य सूचक तर्क के तहत नास्तिक रूस के नेता पुतिन यूक्रेन में एक युद्ध में शामिल है, जिसके नेताओं को खुलेआम नाजी माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आगे तक नास्तिकता के विरुद्ध फातिमा के युद्ध के जमीनी बल फासीवाद और नाजीवाद है। बेशक यूक्रेनी सरकार के नेताओं के बारे में ये हकीकत अच्छी तरह दस्तावेजीकृत होने के बावजूद हिटलर के सार्वजनिक प्रबोधन और प्रचार के राइख मंत्रालय का आधुनिक रूप, मुख्यधारा की मीडिया, इन तथ्यों को भरसक छुपाया है।
यूक्रेन नाम स्लाविक शब्द यूक्राइना से निकला है, जिसका अर्थ सीमांत प्रदेश या किनारा होता है। यह शब्द ऐतिहासिक रूप से कीवियन रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होता था। कीवियन रूस एक मध्यकालीन राज्य था, जो आधुनिक यूक्रेन का पूर्ववर्ती था और पूर्वी यूरोप तथा यूरेशिया के चौराहे पर स्थित था। इतिहास भर ये विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं और साम्राज्यों, जैसे बिरांटीन साम्राज्य, उस्मानी साम्राज्य, रूसी साम्राज्य आदि के मिलन बिंदु के रूप में कार्य करता रहा है। अपने रणनीतिक स्थान के कारण ये एक सीमांत क्षेत्र बना, जहां महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, राजनीतिक और सैन्य अंतःक्रियाएं हुईं। मध्यकाल में यूक्रेन कीवियन रूस का सीमावर्ती क्षेत्र था, जो एक शक्तिशाली राज्य था और जिसमें आधुनिक यूक्रेन, रूस और बेलारूस के कुछ भाग शामिल थे। समय के साथ कीवियन रूस का विस्तार और संकुचन होता रहा, उसकी सीमाएं अक्सर बदलती रहीं और यूक्रेन राज्य की परिधि पर बना रहा। 1985 में सोवियत संघ के पतन के बाद, जैसा कि पद्य 10 में दर्शाया गया है, पद्य 11 और 12 उस युद्ध का उल्लेख करते हैं जिसमें दक्षिण का राजा पलटवार करता है और उत्तर के राजा पर विजय प्राप्त करता है। वो युद्ध राफिया में लड़ा गया था, जो दक्षिण के राजा और उत्तर के राजा के क्षेत्रों की सीमा रेखा थी। राफिया का युद्ध, जो 1517 ईसा पूर्व में हुआ, अपना नाम उस नगर से प्राप्त करता है जिसके निकट ये युद्ध लड़ा गया था। राफिया प्राचीन पलिश्तीन के तटीय क्षेत्र में स्थित एक नगर था, जो मिस्र के टॉलेमिक राज्य और सेल्यूकिड साम्राज्य के बीच की सीमा के निकट था। युद्ध के समय राजा टॉलेमी चतुर्थ फिलोपेटर के अधीन मिस्र के टॉलेमिक राज्य और राजा एंटायोकस तृतीय के अधीन सेल्यूकिड साम्राज्य के बीच की सीमा राफिया के आसपास के क्षेत्र में स्थित थी। ये युद्ध इस सीमा प्रदेश के निकट लड़ा गया क्योंकि दोनों पक्ष लेवेंट के सामरिक प्रदेशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। प्राचीन नगर राफिया आधुनिक शहर रफह के निकट स्थित है। रफह दक्षिणी गाजा पट्टी में स्थित एक शहर है जो फिलिस्तीनी क्षेत्रों का हिस्सा है। 1870 ईसा पूर्व राफिया में टॉलमी की विजय के बाद उसने यरूशलेम में यहूदियों पर अत्याचार शुरू किए और मिस्र में भी। ये विजय अल्पकालिक थी और यूं कहे तो अगले 3 पदों में उसे वाटरलू जैसी हार मिली। 13वें पद में पहले पराजित हुआ उत्तर का राजा लौटता है और 15वें पद तक वो दक्षिण के राजा पर हावी हो जाता है। यूक्रेन में अपनी जीत का इस्तेमाल पुतिन, जो प्रचार में विशेषज्ञ रहे पूर्व केजीबी अधिकारी हैं, संभवतः यूक्रेनी नेतृत्व की नाजी जड़ों को उजागर करने के लिए करेंगे और वे पश्चिमी दुनिया में उन लोगों को भी उजागर करेंगे जिन्होंने आर्थिक लोभ के कारण उस शासन का समर्थन किया तथा निस्संदेह वैश्विकतावादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए छिपे हुए ब्लैक साइट्स और जैव प्रयोगशालाओं को भी उजागर करेंगे, जिनका वित्त पोषण संयुक्त राज्य अमेरिका के करदाताओं द्वारा किया गया है। वे खुलासे दुनिया के वैश्विकतावादियों की मौजूदा छोटी दलीलों को और संयुक्त राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के टिप्पणीकारों की दलीलों को भी ध्वस्त कर देंगे। पुतिन की वो जीत 8वें राष्ट्रपति, जो कि 7ों में से है, को ये जनादेश देगी कि वो इतिहास में आयत 16 से ठीक पहले आने वाले भविष्यवाणी को हरिप कर जमने रख खरे। और आयत 16 है शीघ्र आने वाला रविवार का कानून। 13वें पद में उत्तर का राजा अपनी सेना को पुनर्गठित करता है और 14वें पद में मूर्ति पूजक रोम पहली बार इतिहास में प्रस्तुत होता है, यद्यपि वो अभी उत्तर का राजा नहीं है। वहां उसकी पहचान उस प्रतीक के रूप में की गई है जो दर्शन को स्थापित करता है और उस शक्ति के रूप में जो स्वयं को ऊंचा उठाती है और फिर गिर जाती है। यूक्रेन में युद्ध में पुतिन की विजय के बाद पापत विश्व राजनीति में स्वयं को ऊंचा उठाना शुरू करेगा और ये 16वें पद में वर्णित रविवार के कानून से ठीक पहले होगा। फ्रांसीसी क्रांति और उसका रूसी क्रांति से संबंध, नेपोलियन और पुतिन, फातिमा का चमत्कार और उसके 3 रहस्य, वेटिकन और हिटलर के बीच गुप्त गठबंधन, वेटिकन और रीगन के बीच गुप्त गठबंधन, ये सभी भविष्य सूचक चक्र है जो 11 से 15 तक के पदों के इतिहास में एक दूसरे को काटते हैं, जो 11 सितंबर 2001 से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में रविवार कानून तक की ऐतिहासिक अवधि के दौरान घटित होते हैं। पद 10 पर आने से पहले इन भविष्य सूचक चक्रों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित लेख एनबीसी न्यूज से लिया गया है, जो जितना हो सकता है उतना ही मुख्य धारा मीडिया है, और MSM हिटलर के द्वितीय विश्व युद्ध के प्रचार तंत्र का आधुनिक संस्करण है। यह लेख स्वाभाविक रूप से पुतिन विरोधी, रूस विरोधी और यूक्रेन समर्थक है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। स्वर्ग के राज्य के नागरिकों के रूप में परमेश्वर के लोगों को शैतानी कार्य के किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए और हर युद्ध शैतानी कार्य है। इस लेख का उद्देश्य उन लोगों को जो कैथोलिक धर्म उत्तर का राजा और नास्तिकता दक्षिण का राजा के बीच भविष्यवाणी संबंधी युद्ध से तथा इस तथ्य से कि उन दोनों भविष्यवाणी संबंधी शक्तियों के युद्ध में नाजीवाद को कैथोलिक धर्म की प्रॉक्सी सेना के रूप में ठीक वैसे ही जैसे 1989 में संयुक्त राज्य अमेरिका का उपयोग किया गया था प्रयुक्त किया गया है, अपरिचित हैं अवगत कराना है। भविष्यवाणी के छात्रों को इतना प्रमाण होना चाहिए कि वे देख सकें कि द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध का पृष्ठभूमि इतिहास यूक्रेन में चल रहे वर्तमान युद्ध में परिलक्षित होता है, क्योंकि ये दानियल के अध्याय 11 की आयत 11 और 12 की पूर्ति करता है।
भविष्यवाणी की प्रत्यक्ष पूर्ति को दर्शाने वाली ऐतिहासिक घटनाएं लोगों के सामने रखी गईं और ये देखा गया कि वो भविष्यवाणी उन घटनाओं का रूपकात्मक निरूपण है जो इस पृथ्वी के इतिहास के समापन तक ले जाती हैं। सिलेक्टेड मैसेजेस बुक 2 102।
NBC न्यूज लेख। यूक्रेन की नाजी समस्या वास्तविक है, भले ही पुतिन का डी नाजीकरण का दावा नहीं है।
यूक्रेन पर रूस के हमले को उचित ठहराने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा गढ़ी गई अनेक विकृतियों में शायद सबसे अजीब उनका ये दावा है कि ये कार्रवाई देश और उसके नेतृत्व को नाजीवाद से मुक्त करने के लिए की गई। अपने पड़ोसी के क्षेत्र में बख्तरबंद टैंकों और लड़ाकू विमानों के साथ प्रवेश करने का औचित्य प्रस्तुत करते हुए पुतिन ने कहा कि ये कदम लोगों की रक्षा करने के लिए उठाया गया जिन्हें उत्पीड़न और नरसंहार का शिकार बनाया गया है, और कि रूस यूक्रेन के निरस्त्रीकरण और नाजीवाद से मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। पुतिन की विनाशकारी कार्रवाइयां, जिनमें यहूदी समुदायों का विध्वंस भी शामिल है, ये स्पष्ट करती हैं कि जब वे कहते हैं कि उनका लक्ष्य किसी का भी कल्याण सुनिश्चित करना है, तब वे झूठ बोलते हैं। पहली नज़र में ही पुतिन का ये दुष्प्रचार बेतुका है, खासकर इसलिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की यहूदी लिंक खतेर सादा वतन का आतंक बंद हो गए थे। यूक्रेन में हाल में सामूहिक हत्याओं या जातीय सफाई के होने के भी कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा दुश्मनों को नाजी कह देना रूस में एक आम राजनीतिक चाल है, खासकर ऐसे नेता की तरफ से जो दुष्प्रचार अभियानों को तरजीह देता है और कब्जे को जायज ठहराने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के एक दुश्मन के खिलाफ राष्ट्रीय प्रतिशोध की भावनाओं को भड़काना चाहता है। लेकिन भले ही पुतिन प्रचार में लगे हों, ये भी सच है कि यूक्रेन को एक वास्तविक नाजी समस्या है, अतीत में भी और वर्तमान में भी। पुतिन की विनाशकारी कार्रवाइयां, जिनमें यहूदी समुदायों का विनाश भी शामिल है, ये स्पष्ट करती हैं कि जब वे कहते हैं कि उनका लक्ष्य किसी का कल्याण सुनिश्चित करना है, तो वे झूठ बोल रहे हैं। पर जितना महत्वपूर्ण क्रेमलिन की बर्बर आक्रामकता के खिलाफ पीला नीला ध्वज बचाना है, उतनी ही खतरनाक चूक होगी यूक्रेन के यहूदी विरोधी इतिहास और हिटलर के नाजियों के साथ सहयोग, साथ ही कुछ हलकों में बाद के वर्षों में नियो नाजी गुटों को अपनाए जाने को नकारना। पलायन कर रहे यूक्रेनियों के बारे में इतनी हमदर्दी से बात क्यों की जा रही है? वे गोरे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की पूर्व संध्या पर यूक्रेन यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी समुदायों में से एक का घर था। अनुमान 27 लाख तक लगाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र में लंबे समय से रहे यहूदी विरोध और पोग्रोम्स के इतिहास को देखते हुए उल्लेखनीय संख्या है। अंत तक आधे से अधिक मारे गए। 1941 में जब जर्मन सैनिकों ने कीव पर नियंत्रण कर लिया, तो उनका स्वागत हाइल हिटलर लिखे बैनरों से किया गया। थोड़े ही समय बाद लगभग 34,000 यहूदियों, रोमा और अन्य अवांछनीय लोगों के साथ को घेर कर पकड़ लिया गया और पुनर्वास के बहाने शहर के बाहर के मैदानों की ओर ले जाया गया, जहां उनकी सामूहिक हत्या कर दी गई। इस नरसंहार को बाद में गोलियों द्वारा किया गया होलोकॉस्ट के रूप में जाना गया। बाबिन यार की खाई 2 साल तक एक सामूहिक कब्र के रूप में भरती रही। वहां 100,000 तक लोगों की हत्या होने के साथ ये ऑशविट्स और अन्य मृत्यु शिविरों के बाहर होलोकॉस्ट के सबसे बड़े एकल हत्या स्थलों में से एक बन गया। शोधकर्ताओं ने नोट किया है कि उस स्थल पर नाजी हत्या आदेशों को लागू करने में स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजकल यूक्रेन में यहूदियों की संख्या 56,000 से 140,000 के बीच है और उन्हें ऐसी स्वतंत्रताएं और सुरक्षा प्राप्त हैं जिनकी उनके दादा दादी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसमें पिछले महीने पारित किया गया एक अद्यतन कानून भी शामिल है जो यहूदी विरोधी कृत्यों को अपराध घोषित करता है। दुर्भाग्यवश ये कानून कट्टरता के सार्वजनिक प्रदर्शनों में उल्लेखनीय वृद्धि से निपटने के लिए बनाया गया था, जिसमें आराधनालयों और यहूदी स्मारकों पर स्वस्तिक चिन्हों से की गई तोड़फोड़ और कीव व अन्य शहरों में वाफेन एसएस का महिमा मंडन करने वाले सिहरन पैदा करने वाले मार्च शामिल थे। एक अन्य चिंताजनक विकास ये है कि हाल के वर्षों में यूक्रेन ने ऐसे यूक्रेनी राष्ट्रवादियों का सम्मान करने वाली प्रतिमाओं की भरमार स्थापित की है जिनकी विरासतें नाजियों के एजेंट के रूप में उनके निर्विवाद रिकॉर्ड से कलंकित हैं। द फॉरवर्ड अखबार ने इन निंदनीय व्यक्तियों में से कुछ को सूचीबद्ध किया जिनमें यूक्रेनी राष्ट्रवादियों का संगठन OIN के नेता स्तेपान बांदेरा भी शामिल हैं, जिनके अनुयायियों ने SS और जर्मन सेना के लिए स्थानीय मिलिशिया के सदस्यों के रूप में काम किया। यूक्रेन में इस नाजी सहयोगी का महिमा मंडन करने वाले कई दर्जन स्मारक और दर्जनों सड़कों के नाम है, इतने कि इसके लिए दो अलग अलग विकिपीडिया पृष्ठों की आवश्यकता पड़ती है, द फॉरवर्ड ने लिखा। अक्सर सम्मानित किए जाने वाले एक अन्य व्यक्ति रोमन शुकेविच हैं, जिन्हें यूक्रेनी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया जाता है, लेकिन वे एक खौफनाक नाजी सहायक पुलिस इकाई के नेता भी थे जिसके बारे में द फॉरवर्ड का कहना है कि वो हजारों यहूदियों और पोलिश लोगों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार थी। OUN के कभी के अध्यक्ष यारोस्लाव स्टेट्सको के लिए भी मूर्तियां लगाई गई हैं, जिन्होंने लिखा, मैं यूक्रेन में यहूदियों के समूल विनाश पर जोर देता हूं। पिछले दशक में अति दक्षिणपंथी समूहों ने भी राजनीतिक प्रभाव हासिल किया है। इनमें सबसे भयावह स्वोबोदा पूर्व में सोशल नेशनल पार्टी ऑफ यूक्रेन है, जिसके नेता ने दावा किया कि देश पर मॉस्कोवाइट यहूदी माफिया का नियंत्रण है और जिसके उपनेता ने यूक्रेन में जन्मी यहूदी अभिनेत्री मिला कुनिस का वर्णन करने के लिए एक यहूदी विरोधी गाली का इस्तेमाल किया। फॉरेन पॉलिसी के अनुसार स्वोबोदा ने यूक्रेन की संसद में कई सदस्यों को भेजा है, जिनमें से एक ने होलोकॉस्ट को मानव इतिहास का उज्ज्वल काल कहा। इसी तरह चिंताजनक ये है कि नवनाजी यूक्रेन में बढ़ती जा रही स्वयंसेवी बटालियनों में से कुछ का हिस्सा हैं। वे 2014 में पुतिन के क्रीमिया पर आक्रमण के बाद पूर्वी यूक्रेन में मॉस्को समर्थित अलगाववादियों के खिलाफ कुछ सबसे कठिन सड़क लड़ाइयां लड़ने के बाद युद्ध अनुभवी हो चुके हैं। उनमें से एक अजोव बटालियन है जिसकी स्थापना एक घोषित श्वेत वर्चस्ववादी ने की थी, जिसने दावा किया था कि यूक्रेन का राष्ट्रीय उद्देश्य देश को यहूदियों और अन्य हीन नस्लों से मुक्त करना था। 2018 में अमेरिकी कांग्रेस ने ये शर्त रखी कि यूक्रेन को दी जाने वाली उसकी सहायता का उपयोग अजोव बटालियन को हथियार, प्रशिक्षण या अन्य सहायता प्रदान करने में नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद अजोव अब यूक्रेन की नेशनल गार्ड का आधिकारिक सदस्य है। निश्चित रूप से इस चिंताजनक संदर्भ में कुछ भी पिछले कई सप्ताहों में यूक्रेनियों पर आई पीड़ा को उचित नहीं ठहराता, और ये भी असंभावित है कि जब पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया तो इनमें से किसी ने उन्हें प्रेरित किया हो। वास्तव में पुतिन की वजह से ओडेसा, खार्किव और अन्य पूर्वी शहरों में रहने वाले यहूदी कड़े दबाव में हैं, जहां कई लोगों ने स्थानीय आराधनालयों और यहूदी केंद्रों में शरण ली है। वहीं अन्य विदेशी देशों, जिनमें इसराइल भी शामिल है, की ओर भाग गए हैं। इसराइल ने सभी यहूदियों से यूक्रेन छोड़ने का आग्रह किया है। मेरे दादा दादी को भी उत्पीड़न से बचने के लिए पश्चिमी यूक्रेन से भागना पड़ा था, और इस चक्र का यूं ही जारी रहना दुखद है। यदि देश अराजकता और विद्रोह में फंस जाता है तो यहूदी एक बार फिर अपने ही कुछ सहनागरिकों से खतरे में पड़ सकते हैं। इस खतरे को न मानने का मतलब है कि इसके खिलाफ बचाव के लिए बहुत कम किया जा रहा है। लेकिन भले ही देश के कुछ तत्व इतिहास के सबसे घृणित आंदोलनों में से एक से जुड़े रहे हों, इस नाटक में यूक्रेन के साथ खड़ा होना निस्संदेह अपनाया जाने वाला सम्मानजनक रुख है। अभी हर दिन जब पुतिन यूक्रेनी लोगों के खिलाफ धरती झुलसा देने वाले जोश के साथ अपना हमला और तेज करता है, ये नज़रअंदाज करना मुश्किल है कि वास्तव में एन वर्ड का हकदार कौन है।
एलन रिप, 5 मार्च 2082, स्रोत।
हम अपने अगले लेख में इस अध्ययन को जारी रखेंगे।
जो लोग अतीत को याद नहीं रख सकते, वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। जॉर्ज सांतियाना। भविष्यवाणी के इतिहास में परमेश्वर ने जो कुछ अतीत में पूरा होने के लिए निर्धारित किया था वो पूरा हो चुका है, और जो कुछ आगे अपने क्रम में आना बाकी है वो भी होगा। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता दानियेल अपने स्थान पर खड़ा है, यूहन्ना अपने स्थान पर खड़ा है। प्रकाशित वाक्य में यहूदा के गोत्र के सिंह ने भविष्यवाणी के विद्यार्थियों के लिए दानियेल की पुस्तक खोल दी है, और इस रीति से दानियेल अपने स्थान पर खड़ा है। वो वही साक्ष्य देता है जो प्रभु ने उसे उन महान और गंभीर घटनाओं के दर्शन में प्रकट किया जिन्हें हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम ठीक उनकी पूर्ति की दहलीज पर खड़े हैं। इतिहास और भविष्यवाणी में परमेश्वर का वचन सत्य और असत्य के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का चित्रण करता है। वो संघर्ष अभी भी जारी है। जो बातें हो चुकी हैं वे फिर दोहराई जाएंगी, पुराने विवाद फिर उभरेंगे और नए सिद्धांत लगातार उभरते रहेंगे, परंतु परमेश्वर के वे लोग जिन्होंने अपनी आस्था और भविष्यवाणी की पूर्ति में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्वर्गदूतों के संदेशों की घोषणा में अपना भाग निभाया है, जानते हैं कि वे कहाँ खड़े हैं। उनके पास ऐसा अनुभव है जो उत्तम सोने से भी अधिक मूल्यवान है। उन्हें चट्टान के समान दृढ़ खड़ा खड़ा रहना है, अपने विश्वास के आरंभिक निश्चय को अंत तक अटल पकड़े हुए। चयनित संदेश, पुस्तक 2, 500 नयों।